अब आगे क्या हुआ, मान गए, वकाल लहुम नबीजहुम, और इनके नबी ने इनको ये भी बता दिया, क्या बता दिया, इन आयत मुल्क ही अयात यकुमुत ताबूत फी ही सकीना, कि इनके अहदे हकूमत में वो संदूक तुमको वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकूने कल्ब का सामान है। बात वाज़े, और क्या उसमें, वबकियत मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून, और जिसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबरुकात हैं। नहीं मान रहे थे ना कि नहीं, देर इज नो रीजन कि हम तालूत को क्यों लीडर बनाए, तो अल्लाह ताला ने उनको थोड़ा सा चुप कराने के लिए, और उस दौर में ऐसा होता था कि कोई ना कोई मौजजा देख के कौम चुप होती थी, तो अल्लाह ताला ने नबी के जरिए इनको तसल्ली दिलाई कि देखना इस तालूत के दौरे हुकूमत में तुम्हें वो ताबूते सकीना वापस मिल जाएगा जिसमें मूसा और हारून के छोड़े हुए तबरुकात है। होगा कैसे, तहमिलुहुल मलाइका, इस संदूक को फरिश्ते उठा कर लाएंगे, इन नफीजालिक आयतुल्लकुम, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अब यहाँ क्या हो रहा है, पीछे वाली बात ही की कंटिन्यूएशन है, मान नहीं रहे थे तो नबी ने उनको तसल्ली दिलाई कि देखो तुम्हें ताबूते सकीना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है, नाम लेने को दिल नहीं करता, लेकिन आज मुसलमानों को जोश दिलाने के लिए कोई कह दे कि फलां को हुक्मरान बना लो, वो गरीब है मस्कीन है, लो सारी पाकिस्तानी अवाम कहते हैं हम नहीं मानेंगे इसको, तो अगर कोई कहे अच्छा देखो अगर उसकी मौजूदगी में तुम्हें फलां जमीन का टुकड़ा वापस मिल जाए तो मानोगे, तो हम सब कहेंगे ना हाँ मान लेंगे। बात वैसे इसी तरह इस कौम ने नहीं मानना था, लेकिन उनको एक किस्म का मोटिव दिया गया कि देखना इसके दौरे हुकूमत में वो ताबूत सकीना वापस आ जाएगा, कहा अच्छा ऐसा होगा तो हम मान लेते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि फिर ऐसा ही हुआ। अब इसमें बहुत सारे वाक्यात हैं जो हमारी ज़रूरत नहीं लेकिन किताबों में मिलते हैं, कि दुश्मन कौम जिनके पास वो ताबूत सकीना था ना, अब वो देखा जाए तो वो मुसलमानों के एसेट्स थे ना, अल्लाह सुबहाना ताला ने कुछ इस तरह का मामला किया कि वो ताबूत सकीना जहाँ जाके रखते वहाँ पे कोई वबा आ जाती। अब ये दुश्मन कौम के साथ हो रहा है, देखिए जो किसी का हक झुकाएगा तो उसको कहाँ पनपेगा, वो मुसलमानों से छीना अपने बस रखा, जिस मुल्क जिस जगह में वो उसको रखते वहां कोई वबा फूटती, अब जब वबा फूटती तो मान जाते हो, वो इसको मनहूस समझने लग गए, दिल में कोई गिल्ट भी होगा कि हमने तो ये मुसलमानों से छीना हुआ है, आखिर उन्होंने कहा कि हमारी इससे जान छुड़ाए। अब क्या हुआ, वो उस ताबूत को जाके कहीं दूर छोड़ाते थे, जब वो छोड़ते तो उधर से कहते हैं कि फरिश्ते उसको उठाते कुछ करते और लाके फिर उन्हीं की जगह पे रखते, यानी थोड़ी देर इस तरह का सिलसिला चलता रहा। एक दिन उन्होंने गाय या बैल जो थी उनके ऊपर उसको रखा और कहा कि इनको कहीं ले जाओ, अल्लाह सुब्हान तआला ने कोई इंतज़ाम किया कि वो फरिश्तों के जरिए तालूत के पास पहुंच गया, तालूत साहब ने ला के वो अपने लोगों को दिखा दिया, तो लोग खुश हो गए कि चलो जी इनकी वजह से हमें ताबूत वापस मिल गया। देखिए जब अल्लाह ने कोई काम करना होता है ना, असबाब बना देता, बस जब भी अल्लाह ने मुसलमानों को कोई खैर देनी है ना आगे भी, सिर्फ सबब बनेगा, हम हैरान रह जाएंगे और एक दिन खबर मिल जाएगी ये काम हो गया। शर्त एक है, अंतुमुलाउन इन कुंतुम मोमिनीन, सूरत आले इमरान में हम पढ़ेंगे, तुम ही मुसलमानों बुलंद हो, शर्त एक है कि तुम अपना ईमान पक्का कर लो। बहरहाल अभी तक की कहानी कहाँ तक खत्म हुई, कि उन्होंने मान लिया कि ठीक है तालूत ही बादशाह, अब तालूत बादशाह बन गए, जो भी हुआ। अब अगला मरहला जो बड़ा ही सख्त मरहला है, अब देखिए जिनको आपने लीडर बनाया है, जिनको आपने बड़ा बनाया है, तो अब वो आपके ऊपर कोई पाबंदी लगाएंगे ना। तालूत जब आए तो उन्होंने अब कौम को थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी कि देखो भाई अब हमने जाके जालूत या कौम अमालका से लड़ाई करके अपना वतन लेना है ना, तुम चाहते हो ना कि हम लड़ाई करके वतन वापस लें, तो उसके लिए तुम्हारे पर कुछ पाबंदियां हैं। वो क्या, फलम्मा, फिर जब फसला तालूत बिल जुनूद, जब तालूत लश्कर लेकर चल पड़े, काला, तो कहा, अब ये काला किसने कहा, लिख लेनी चाहिए इसके, तालूत ने यानी उनके लीडर ने अब उनको कहा, देखो इन अल्लाह मुबतलीकुम बिनहरिन, देखो अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करने वाला है एक नहर से। कहते हैं कि इस कौम ने जब दुश्मन कौम के पास जाना था तो रास्ते में एक नहर थी, कहा कि वहां नहर आएगी, पानी की जगह है, पी सकते हो, लेकिन तुम्हें इजाजत नहीं है, पाबंदी लगा दी कि तुम इस सफर में पेट भर कर पानी नहीं पियोगे। क्यों, फमन शरीब मिन्हु, जिसने इस पानी में से पेट भर के पी लिया, फलई समिन्नी, फिर उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ मगर जाहिर प्यास तो लगी होगी, तो फिर वमलम यत अमहू, और जो ना इसको चखे यानी पेट भर के ना पिए, फइन्नहु मिन्नी वो मुझसे है, प्यास लगे तो क्या करो, इल्ला मन इग्तरफ गुरफतन बियदिही, हाँ मगर जो कोई एक चुल्लू भर पानी पी ले तो कोई हर्ज नहीं। बात वाजे हो गई, दुश्मन के साथ जिहाद के लिए कौम तैयार की जा रही है। हर अच्छा लीडर यही इंस्ट्रक्शंस देता है ना कि जाओ तो पूरी तैयारी से जाओ। नबी ने इनको बता दिया कि देखो पेट भर के तुमने पानी नहीं पीना। एक तो हिकमत जाहरी भी समझ आती है अगर इसके जाहिर पे हम चलें, कि जब बहुत पानी जो बंदा पी लेगा, नंबर एक चला नहीं जाएगा, बोझल हो जाएंगे, फिर वॉशरूम की जरूरत होगी, कभी चल नहीं रहे कभी वॉशरूम जा रहे हैं, वॉशरूम जाएंगे थोड़ी देर बाद फिर प्यास लग जाएगी। और अगर हम इसको इस्तियारा समझें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुन फि दुनिया का अन्नक गरीब व आबिर सबील, इस दुनिया में इस तरह रहो जैसे तुम अजनबी हो या राह चलते मुसाफिर, थोड़ी सी दुनिया ले लो जरूरत की तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। और जो इस दुनिया से पेट भर गया उसका पेट तो कभी भरेगा नहीं, वो तो प्लास्टिक का बना हुआ फूलता ही जाता है। तो जो लोग पेट भर के दुनिया लेना चाहते हैं ना, वो अल्लाह के काम नहीं कर सकते, ये मैसेज है। अब ये तो इंस्ट्रक्शंस थी बड़ी खूबसूरत, हुआ क्या आइए देखते हैं। फशरीबु मिन्हु, सारे के सारे पी गए, सब ने पेट भर के पी लिया, इल्ला कलीलम मिन्हुम, मगर थोड़े से लोग इससे बचे। जब दुनिया सामने आती है तो फिर लोग सब्र नहीं कर पाते, ये तो उस वक्त तक बढ़के होती है जब तक मामला नहीं पड़ता। चार पैसे का फायदा सामने आता है ना तो हमें अल्लाह का दीन भूल जाता है। यहाँ बिल्कुल यही मिजाज बता दिया कि बातें तो सुनी उन्होंने बड़ी, करेंगे करेंगे, जैसे बच्चे आप 10 बातें उनको समझाएं, बेटा वहां जाके ये नहीं करना, बेटा खाना नहीं वहां खाना, बेटा वहां चीजें नहीं मांगनी, जी अम्मी, बड़ा प्यारा सर हिलाते हैं मासूम सा, और वहां जाके साथ ही आपको कुन्नी मारेंगे, पानी चाहिए, जूस चाहिए, प्यास लगी, भूख लगी, वॉशरूम में जाना है, होते ना। तो कौमों का भी रवैया बच्चों वाला हो जाता है, जहरा चले हुए थे, थकन भी थी, तो कहा चलो खाना नहीं तो पानी पीते हैं, सबने पी लिया, थोड़े से बच गए। जब थोड़े से बचे तो क्या हुआ, नबी ने कहा गेट आउट। अच्छा असूल बड़े पुख्ता होते थे, यहाँ आयत में पूरा वाक्या नहीं होता, बीच में ये जुमलों के साथ वाक्या पूरा होता, जिन्होंने पानी पिया ना फलई समिन्नी, पीछे उन्होंने कह दिया ना कि मेरे साथ चलना है तो बस तुम्हें फिर सब्र करना पड़ेगा, जिन्होंने पानी पी लिया उनको कहा हटा दो। अब आगे क्या हुआ, फलम्मा जावजहु हुआ वल्लज़ीन आमनू माहू, अल्लाह अकबर, फिर जब तालूत और इनके मुसलमान साथी नहर पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया आज हम में जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला करने की ताकत नहीं रही। इसको हाईलाइट कर लें और दुआ करें अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। नबी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि तुम जाओ, उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया। ये अल्लाह का एक इतना बड़ा असूल है ना कि जब बंदा दीन के काम की भी नियत करे, दावे भी करे, लेकिन दुनिया ना छोड़े, और हलाल से है तो फिर तो चलो कुछ दिन चलेगा, हराम ना छोड़े और नबी की सुन्नतों को ना माने, ये नबी की बातें ही नहीं मान रहे ना, तो फिर उनमें खुद ही हिम्मत खत्म हो जाती है, वो फिर एंड पे नहीं पहुंचते, कोई पहले पारे पे गिर जाएगा तो कोई दूसरे पे गिर जाएगा तो कोई 10वें क्या 30वें 25वें पारे पे भी लोग गिर जाते हैं। ला ताकत लना अल्यौम, थक गए, टू मच, इट्स टू मच, अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत हो गया, सब्र है, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, बच्चे हैं, पैसे, फीसें, किराए, खर्चे, 100 बातें करके बंदा कहता है मेरे अंदर हिम्मत टूट गई। तो यहां से लिखिए, यहां देखिए इन्होंने क्या किया है, नबी की नाफरमानी की है, तो नबी की नाफरमानी बंदे से नेकियां करने की ताकत छीन लेती है। आज हम मुसलमान जो सुस्त हो गए ना, उसकी वजह यह है कि हमारी जिंदगी नबी वाली जिंदगी नहीं है, और बड़ा जिहाद है, सच्ची बात है, जो दुनिया के भी पूरे तकाजे कर रहे हैं और साथ दीन लेके चल रहे हैं, मैं कहती हूँ उनको सलाम करने को दिल करता है हम पे काम पे हुए, लेकिन दीन का काम इतना आसान नहीं है कि बंदा नाफरमानियों के साथ करे, वो हट गए, उन्होंने काम नहीं जा सकते। लेकिन قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, मगर उन लोगों ने कहा जो अल्लाह से मुलाकात का यकीन रखते थे, उन्होंने क्या कहा, अब ये जुमला उनका हाईलाइट कर ले और दुआ करें ये हमारा जुमला बन जाए, كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بارہا ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب رہی ہے، کیونکہ واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب کچے پکے ایمان والے لوگ نکلے تو ظاہر ہے کہ باقی گروپ پہ بھی اثر پڑتا ہے نا. آپ کلاس میں اور آپ میں سے 8-10 لوگ ہی اٹھ کے جانے لگ جائیں تو باقی بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وقت بہت ہی اوپر ہو گیا ہوگا یا کیا ہوا ہے، ڈاؤٹ آتے ہیں نا. بجائے اس کے کہ ان کو جاتا دیکھ کر کہ ہم تھوڑے ہو گئے، ایمان والے ہلتے، بلکہ انہوں نے کہا نہیں فکر نہیں کرو، بلکہ کبھی کبھی چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعتوں پہ. کیا پتہ چلا کہ اپنی کثرت کا مان نہ کرو، اپنے آپ کو بڑا نہ مانو. اللہ کی ذات جو ہے وہ جب تمہارا ہاتھ پکڑ لے تو پھر تم سمجھ لو کہ اس میں تمہیں فائدہ ہوگا، اور واقعی پھر یہی لوگ جمے. دعا کریں اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں کر دے. اللہ کے نبی کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ تھے، پورا معاشرہ بگڑا ہوا تھا اور چند لوگوں کو اللہ نے اپنے کام کے لیے چنا. لیکن یاد رکھیے جو لوگ چنے ہونے کے باوجود چلے جاتے ہیں، بس اب دیکھیں چنے اور چلے دونوں کو اوپر نیچے لکھ کے دیکھ لیں کتنا کو لفظوں کا فرق ہے، پھر ان کا نصیب اللہ ہی کبھی کھولے دوبارہ تو کھلتا ہے، ورنہ بہت کم موقع ملتے ہیں. اور یہ یقین رکھیے کہ تھوڑے لوگ بھی وہ کام کر جائیں گے جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ واللہ مع الصابرین. صبر ضروری ہے امت مسلمہ کے لیے، اور علم کا سفر صبر کا سفر ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں نکلے، اب کون بچے اینڈ پہ؟ تھوڑی دنیا والے، غرفتاً چلو بھر دنیا ساتھ رکھ لی ضرورت کا توشہ، چل پڑے، گھبرائے نہیں. اب جالوت کون ہے؟ دشمن قوم کا سردار، جالوت لفظ اس کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ادھر سے اپنی فوجوں کے لے کے آ رہا تھا، یہ اس کے سامنے ہو گئے. وہ جنود ہی اور اس کے لشکر بھی سامنے تھے. تو قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الكافرین. تو انہوں نے دعا کیا، ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم میدان جنگ میں جما دے، پھر ہماری مدد فرما کہ ہم منکرین حق کے گروہ پر فتح یاب ہو جائیں. کیا پتہ چلا، نمبر ایک نبی کی پوری اطاعت، بات مانی نا، تیاری پوری کی، پھر تیسری چیز دنیا تھوڑی لی، چوتھی چیز ساتھیوں کے جانے کے باوجود یہ نہیں کہا میرے ساتھ والا نہیں آ رہا تو میں نے بھی نہیں آنا، ایک نہیں آیا تو میں کیوں، اور پانچویں چیز دیکھیے ساری کوششوں کے بعد دعا. یہ پانچ چیزیں اپنی پانچ انگلیوں پہ لکھ لیجیے. اللہ کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ آتی ہے جو مشکلات میں کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. آپ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی اس سے ملتی جلتی دعا پڑھیں گے، وہاں بھی ٹیلی کرواؤں گی انشاءاللہ. یہ پوری سورہ ہے نا، یہ دو قوموں کا بلنڈ ہے. یہاں بنی اسرائیل کی یہ باتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو اب سکھایا جا رہا ہے کہ اب بدر کا موقع سامنے ہے. روایت میں آتا ہے کہ یہ جو تالوت کے ساتھ لشکر تھا نا، صرف 313 لوگ بچے تھے، باقی سب پی گئے. اور غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا، مسلمان کتنے تھے؟ 313 تھے. آگے آپ سنیں گے کہ غزوہ احد میں 1000 نکلے تھے گھر سے، 300 عبداللہ بن ابی کے ساتھ رستے میں مقام شوت پہ رک گئے، 700 پیچھے گئے. ادھر 313 تھوڑے تھے اور غزوہ بدر میں فتح مبین ہو گئی، ادھر مسلمان اس سے ڈبل تھے آلموسٹ، 700. تو شروع میں فتح ہوئی لیکن ذرا سی غلطی کی تو اللہ نے ایک جھٹکا دے دیا. تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، کتنے لوگ آتے ہیں نو پرابلم، ہیں دیکھے کتنے کام کے اس میں سے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر 100 لوگوں میں سے ایک شخص کام کا ہوتا ہے، جیسے 100 اونٹوں میں ایک اونٹ کام کا ہوتا ہے. ڈھیر سے کیا ہوتا ہے، بھیڑ سے کیا ہوتا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان 4 بلین ہو جائیں. یہ دیکھو ان 4 بلین کو ایک پلڑے میں ڈالو تو ایمان کتنے اونس نکلتا ہے. ایک پلڑے میں ایک صحابی ہو اور دوسرے میں آج کی پوری امت مسلمہ ہو تو صحابی کا ایمان ان بلین سے اوپر ہے. اصل اللہ کی مدد ایمان کے ساتھ ہے. اور ہوا کیا، وہی ہوا جو ہوتا ہے، فہزموہم بإذن اللہ، پھر انہوں نے اللہ کی مدد سے ان کو شکست دے دی. یہ ہے کام، یہ آج امت مسلمہ کو میسج ہے. تم چلو تو صحیح، اللہ تمہارا ہاتھ تھامے گا. ہوا کیا، وہ قتل داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. ये है पहला मुकाम जहां दाऊद अलैहिस्सलाम का किरदार सामने आ रहा है। कौन थे? कहते हैं कि हजरत दाऊद जो थे ये शेफर्ड थे, जिसको आप कहें कि चरवाहे थे, बिल्कुल आम शख्स थे, कोई किसी तरह से इनको कोई नहीं जानता, लेकिन बहादुर बहुत थे। और इनको अल्लाह सुबहाना ताला ने एक मुकाम दिया, इनके हाथों से दुश्मन फौज का जो बादशाह था वो मारा गया। और इनके इस मामले की वजह से अल्लाह सुबहाना ताला ने, जिसका कहना चाहिए कि इनके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया, वो क्या हुआ? व कतल दाऊद जालूत। अच्छा मैं यहाँ रोक के जरा आपको जगाऊं, लफ्ज दाऊदू और जालूता, दाऊद की पेश और जालूत की जबर ने तर्जमा क्या कराया? और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को। मैं ये क्यों तर्जमा नहीं कर पा रही कि कत्ल किया दाऊद को जालूत ने? हो सकता था ना, क्योंकि लफ्ज दाऊद के ऊपर जो पेश है ये फाइल की होती है, काम करने वाला। जालूत पे जो आखिरी पेश जबर है वो है मफ़ऊल, गोया के कत्ल का काम दाऊद ने किया। और किस पे किया? जालूत पे। अब आप बताइए, हम रवा रवि में पढ़ दे वकतल दाऊद जालूत, पढ़ सकते हैं ना, गलती खा सकते हैं। कितना जरूरी है कुरान के ये पांचों इल्म साथ रखना, जिसमें तर्जमा भी तजवीद। आप सिर्फ ग्रामर पढ़ के भी भटकेंगे और आप सिर्फ तजवीद पढ़ के भी प्यासे हैं, जब तक सात तफसीर नहीं सुनेंगे। फिर अल्लाह ने उसको मुल्क भी दिया, बादशाही दी और हिकमत दी। कहते हैं कि तालूत ने अपनी बेटी का निकाह जो था इनसे कर दिया, तो ये फिर नबूवत के खानदान के साथ साथ बादशाहत में आ गए। बाद में अल्लाह ताला ने इनको नबूवत दे दी, तो गोया कि ये पहला दौर है बनी इसराइल का जब नबूवत और बादशाहत एक जगह जमा हो रही है। हिकमत भी दी और इल्म भी दी, वाल्लमहु मिम्मा यशा, और उसको वो भी सिखा दिया जो चाहा। क्या था वो? आगे आप जाके पढ़ेंगे, इनको जिरहें बनाने का तरीका सिखाया गया। कि जिरहें होती हैं जैसे दुश्मन से बचने के लिए लोहे की कड़ियों का जेवर होता है, इनके हाथों में आते ही कहते हैं कि लोहा ना ऐसे नरम हो जाता था जैसे च्युइंगम, फिर उसको ढाल के कड़ियां बनाते थे और फिर उसको बेच के उससे अपनी रोजी कमाते थे। इसी तरह कहते हैं, रिवायतों में आता है कि जब जालूत मैदाने जंग में आया, पूरा सर से पांव तक वो लोहे की संगलियों में था, यानी सिक्योर था। सिर्फ एक आंख की जगह उसने खोली थी ताकि मैं देखूं। दाऊद अलैहिस्सलाम का निशाना इतना पक्का था जैसे गुलेल नहीं होती अपने दौर में, उस पे कुछ वो रख के तो यूं मारते हैं, कहते ऐसा मारा कि वो उसे एक सुराख के अंदर ही जाके लगी और उसकी वजह से ये मारा गया। अल्लाह को क्या किसी के बुलडोजरों और किसी की बड़े F-16 से, अल्लाह तो मिट्टी को बुलेट बना के लगा देता है। इस तरह से दाऊद अलैहिस्सलाम आगे आगे, वलौला दफुल्लाहिन्ना सबादहुम बिबाद, और अगर अल्लाह बास को बास के जरिए दूर ना करता तो क्या होता? लफसदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, तो जमीन फसाद से बिगड़ जाती, भर जाती, और अल्लाह आलिमों पर फजल का इरादा रखता है। ये है इस्लाम में जंगों का मकसद, कि जंगों में अल्लाह ताला कुफार और मुस्लिम दुश्मनों को खत्म करा देता है। शर्त एक है कि दूसरी तरफ मुकाबले पे ईमान वाले मुसलमानों। तो पिछले दौर में काफिरों पे बिजली गिरती थी, सैलाब आ जाते थे, ख़त्म होते थे। अब अल्लाह ताला ज़मीन को कुफर से पाक करता है इस तरह से कि मुसलमानों को उनके मुकाबले पे लाता है, मदद उनकी करवाने के लिए, और नतीजा ये है कि दुश्मन जो है वो मारे जाते हैं। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक, ये हैं वो अल्लाह की आयतें जो हम आप पर हक के साथ सुना रहे हैं। ये सच्ची बातें हैं। आपने कितनी फिल्में, ड्रामे और पता नहीं क्या कुछ सुना देखा होगा, जो कुरान के किस्सों में मज़ा आता है वो आपको कभी उसमें आता था? जब भी कोई स्टोरी आती है तो मैं फील कर रही होती हूँ कि आप ऐसे होते हैं कि अब हिलेंगे भी तो वो एक टेम्पो टूट जाएगा। ये हक की सच्ची स्टोरीज है, ये रियल स्टोरीज है, लेकिन इसके पीछे हक है, फिक्शन नहीं है, झूठ नहीं है। व इन नकल मिनल मुरसलीन, और बेशक आप तो मुरसलीन में से हैं। इसकी तफसीर अब अगला पूरा पारा है, कल बात करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से लफ्ज़ों के एतबार से हमारा दूसरा पारा पूरा हुआ है, अमल के एतबार से पता नहीं कब पूरा होगा। अभी तो बड़े मरहले हैं ना, वो कहते हैं ना अभी तो मोहब्बत के या इश्क के इम्तिहान बहुत सारे हैं, लेकिन बज़ाहर आज हमने दूसरा पारा पूरा किया है। इसमें आप देखिए कि बड़ी खूबसूरत दुआ आई है, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, इसको याद करना है आपने। इंशाल्लाह ताला हर पारे की दुआओं को साथ करते जाएं, ठीक है? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين